अध्याय 29 दूल्हे से मिलने के लिए। ये अध्याय मत्ती 25 आयत 1 से 13 पर आधारित है। मसीह अपने चेलों के साथ जैतून पर्वत पर बैठा है। सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप गया है और स्वर्ग को शाम के रंगों के साथ चित्रित किया गया है। एक घर को शानदार ढंग से सजा हुआ दिखाया गया है, जैसे कि कोई उत्सव होने जा रहा है। उद्घाटन के लिए प्रकाश की धाराएं और कुछ लोग इंतजार में हैं। जल्दी ही शादी की बारात दिखने वाली है। पूर्व के कई हिस्सों में शाम को शादी के उत्सव आयोजित किए जाते हैं। दुल्हा अपनी दुल्हन से मिलने और उसे लाने के लिए आगे बढ़ता है। मशाल की रोशनी में दुल्हन की पार्टी उसके पिता के घर से अपने घर तक जाती है। इस दृश्य को यीशु देख रहा है। दुल्हन की पार्टी जुलूस में शामिल होने की प्रतीक्षा में है। दुल्हन के घर के पास कुछ महिलाएं, जिन्होंने श्वेत कपड़े पहने हुए, वो घूम रही हैं। प्रत्येक में एक दीपक और तेल के लिए एक कुप्पी है। सभी उत्सुकता से दुल्हे के आने का इंतजार में है। समय बीतता जा रहा है। घंटों बीतने के बाद इंतजार करने वाले थक जाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात को शोर सुनाई देता है। दुल्हा आ गया, उससे मिलने के लिए बाहर जाऊं। जो सो रहे थे वो अचानक उठ जाते हैं। वो जुलूस को रोशनी से सजा हुआ संगीत के साथ आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और वो दुल्हे और दुल्हन की आवाजें सुनते हैं। 10 युवतियों ने अपने दियों को ठीक किया ताकि वो भी जुलूस में शामिल हो सके, लेकिन 5 ने अपने कुप्पियों में तेल नहीं डाला। संकट में वे अपने समझदार साथियों से विनती करते हुए कहती हैं, हमें अपना कुप्पियों में से थोड़ा सा तेल दे दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझ रहे हैं। लेकिन प्रतीक्षा कर रही 5 युवतियां अपने दियों में तेल भर लिए और अब उनके पास तेल नहीं था। ऐसा न हो कि हमारे और आपके पास पर्याप्त तेल न हो, बल्कि उनके पास जाओ जो तेल बेचते हैं और अपने लिए खरीदो। जब वे खरीदने गए तो जुलूस आगे बढ़ गया और उन्हें पीछे छोड़ दिया। 5 दीपकों के साथ वो दुल्हन के झुंड के साथ घर के द्वार में प्रवेश कर गईं और दरवाजा बंद हो गया। जब मूर्ख कुवारियां शादी के भोज हॉल में पहुंची तो उन्हें एक अप्रत्याशित इनकार मिला। पूर्व के गुरु ने घोषणा की, मैं जानता हूं कि तुम नहीं हो। वे सुनसान सड़क पर अंधेरे में खड़े रह गईं। जैसा कि मसीह दुल्हे के लिए इंतजार करने वाली पार्टी को देख रहा था, उसने अपने शिष्यों को इन कुवारियों की कहानी सुनाई। उनके अनुभव से चर्च कलीसिया के अनुभव को दर्शाया गया है, जो उनके दूसरे आगमन से पहले ठीक हो जाएगा। देखने वालों 2 वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कुवारी कहा जाता है, क्योंकि वे एक शुद्ध विश्वास का दावा करते हैं। दियो द्वारा ईश्वर शब्द का प्रतिनिधित्व किया जाता है। भजनहार कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। भजन संहिता 119 आयत 105। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। इस प्रकार आत्मा को जरकया की भविष्यवाणी में दर्शाया गया है, वह दूत जो मेरे साथ बात करता है वह फिर से आया, वह कहता है और मुझे जगाया। एक आदमी के रूप में जो अपनी नींद से जागा है और मुझसे कहा, तू क्या देख रहा है? और मैंने कहा, मैंने देखा है सभी सोने के दीवट और उसके ऊपर और बाईं और दाईं और एक कटोरा। इसलिए मैंने जवाब दिया, उस स्वर्गदूत से जो मुझसे बात कर रहा था, यह वचन है, प्रभु में जरूबाबेल से कहा, न तो शक्ति से न बल से, बल्कि मेरी आत्मा से, यहोवा यों कहता है। फिर मैंने उत्तर दिया और उससे कहा, ये 2 उद्घोषक है जो पृथ्वी के स्वामी हैं। ज़करिया 4 आयत 1 से 14। 2 जैतून के पेड़ों से स्वर्ण तेल को दीवट के कटोरे में सुनहरे पाइप के माध्यम से खाली कर दिया था और अभयारण्य को रोशनी देने वाले सुनहरे लैंप में बदल गया। इसलिए पवित्र लोगों से जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं, उनकी आत्मा को उन मानव वाद्य यंत्रों के लिए प्रदान किया जाता है जो उनकी सेवा के लिए पवित्र है। 2 उद्घोषित का मिशन ईश्वर के लोगों से संवाद करना है कि स्वर्गीय अनुग्रह जो अकेले उनके वचनों का पैरों तक दीपक और पथ को प्रकाश बना देता है, न शक्ति न बल से, बल्कि मेरी आत्मा से, मेजबानों के प्रभु से प्रार्थना करो। ज़करिया 4 आयत 6। दृष्टांत में सभी कुवारियां दुल्हे को मिलने गईं। सभी के पास तेल के लिए दीपक और तेल वाली कुप्पियां थीं। कुछ समय तक उनके बीच कोई अंतर नहीं देखा गया। जो कलीसिया के साथ जो मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले रहता है। सभी को शास्त्रों का ज्ञान है, सभी ने मसीह के दृष्टिकोण का संदेश सुना है और आत्मविश्वास से उसके प्रकट होने की आशा करते हैं। लेकिन जैसा दृष्टांत में है वैसा ही अब है। प्रतीक्षा के समय में हस्तक्षेप, विश्वास की कोशिश की जाती है और जब शोर होता है तो आवाज आती है, देखो दूल्हा आया, उसको मिलने को जाऊं। बहुतेरे तैयार नहीं हैं, उनके दियों में तेल नहीं है, वे पवित्र आत्मा के निराश्रित हैं। परमेश्वर की आत्मा के बिना उनके वचन का ज्ञान नहीं है। सत्य का सिद्धांत पवित्र आत्मा द्वारा अस्वीकार्य आत्मा को तेज नहीं कर सकता है या परिचित हो सकता है। लेकिन जब तक ईश्वर की आत्मा सत्य को घर में स्थापित नहीं करती, तब तक चरित्र रूपांतरित नहीं होगा। आत्मा के ज्ञान के बिना पुरुष सत्य को त्रुटि से अलग नहीं कर पाएंगे और वे शैतान के कुशल प्रलोभनों के तहत गिरेंगे। मूर्ख कुवारियों द्वारा प्रस्तुत वर्ग पाखंडी नहीं है, उनके पास सत्य के लिए एक संबंध है, उन्होंने सत्य की वकालत की है, वे सत्य को मानने वालों के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन उन्होंने खुद को पवित्र आत्मा के काम करने के लिए उतारा नहीं है। वे यीशु जो चट्टान है उस पर गिरे नहीं है और ना ही अपने पुराने स्वभाव को तोड़ने की अनुमति दी है। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व पथरीली भूमि के सुनने वालों के लिए दर्शाया गया है। वे वचन को तत्परता से प्राप्त करते हैं, लेकिन वे इसके सिद्धांतों को आत्मस्पष्ट करने में विफल होते हैं। इसका प्रभाव कम नहीं हो रहा है। आत्मा मनुष्य के हृदय पर काम करती है, उसकी इच्छा और उसके अनुसार एक नई प्रकृति को आरोपित करती है। लेकिन मूर्ख कुवारी लड़कियों के प्रतिनिधित्व वाले वर्ग को सतही काम के साथ संतुष्ट किया गया है। वे ईश्वर को जानती हैं, उन्होंने उसके साथ साम्य नहीं रखा है, इसलिए वे नहीं जानते हैं कि कैसे भरोसा करना है, कैसे दिखना है, कैसे जीना है। ईश्वर के लिए उनकी सेवा एक रूप में पतित है। वे तुम्हारे पास आते हैं जैसे लोग आते हैं और मेरे लोगों के रूप में आपके सामने बैठते हैं, और वे आपके वचन को सुनते हैं लेकिन वे उसे नहीं मानेंगे। अपने मुंह से वो बहुत प्यार दिखाते हैं लेकिन उनके दिल लोभ से भरे हैं। यहेजकेल 33 आयत 31। प्रेरित पौलुस बताता है कि यह उन लोगों की विशेष विशेषता होगी जो मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले रहते हैं। वे कहते हैं, अंतिम दिनों में खतरनाक समय आएगा पुरुषों के लिए। वे स्वयं के प्रेमी होंगे, ईश्वर के प्रेमियों में अधिक सुख के प्रेमी। ईश्वर का एक रूप है लेकिन उसके बाद सत्ता से इनकार करते हैं। दूसरा तिमुथियुस 3 आयत 1-5, 7। यह वर्ग है जो संकट के समय में रोते हुए शांति और सुरक्षा में पाए जाते हैं। वे अपने दिलों को सुरक्षा में रखते हैं और खतरे में नहीं हैं। जब अपनी सुस्ती से चौंके तो वे अपने भाग्य को खराब करते हैं और दूसरों को अपनी कमी को पूरा करने के लिए लुभाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक बातों में कोई भी आदमी दूसरे की कमी को पूरा नहीं कर सकता। ईश्वर की कृपा से आत्मा स्वतंत्र रूप से प्रदान की गई है, सुसमाचार का संदेश दिया है, उसे जो आने वाला है उसे आने दो, और जो कोई भी उस जीव को दानी स्वतंत्र रूप से लेने देगा। प्रकाशित वाक्य 22 आयत 17। लेकिन चरित्र हस्तांतरणीय नहीं है। कोई भी आदमी दूसरे के लिए भावना प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दूसरे के चरित्र को नहीं प्रदान कर सकता जो आत्मा के कार्य करने का फल है। यद्यपि नूह, दानियेल और अय्यूब इसमें ये, जैसा कि मैं ईश्वर को जीवित करता हूं, वे न तो पुत्र और न ही बेटी का उद्धार करेंगे, लेकिन वे अपनी धार्मिकता से अपनी आत्मा को वितरित करेंगे। यहेजकेल 14 आयत 20। यह एक संकट में है कि चरित्र का पता चला है। जब आधी रात को बयाना की आवाज सुनाई दी, देखो दूल्हा आता है, तुम उससे मिलने के लिए बाहर जाओ। सोती हुई कुवारियों को उनकी नींद से जगाया गया। ये देखा गया कि किसने इस आयोजन की तैयारी की थी। दोनों दलों को गैर कानूनी लिया गया, लेकिन एक को आपातकाल के लिए तैयार किया गया था। और दूसरे को बिना तैयारी के पाया गया था। तो अब अचानक और अनदेखी आपदा के लिए कुछ ऐसे हैं जो आत्मा को मौत के मुंह में लाता है। ये दिखाएगा कि क्या ईश्वर के वादों में कोई वास्तविक विश्वास है। ये दिखाएगा कि अनुग्रह द्वारा आत्मा कायम है। महान अंतिम परीक्षण मानव परिवीक्षा के करीब आता है, जब आत्मा को आपूर्ति की आवश्यकता के लिए बहुत देर हो जाएगी। इस पृथ्वी के इतिहास में शाम को 10 कुमारियां देख रही है, सभी मसीही होने का दावा करती है। सभी के पास एक मुकुट है, एक नाम है, एक दीपक है, और सभी स्पष्ट रूप से मसीह के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन 5 पहले से ही है। शादी के हॉल के बाहर पांचों आश्चर्यचकित निराश पाएंगे। अंतिम दिन कई लोग मसीह के राज्य में प्रवेश करने का दावा करते हुए कहेंगे, हमने अपनी उपस्थिति में खाया और पिया है, हमारी गलियों में पढ़ाया जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम की भविष्यवाणी नहीं की है, और तेरे नाम में दुष्टात्माएं नहीं निकाली है, और तेरे नाम से कई काम किए हैं? लेकिन जवाब है, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हो जाओ मुझसे। लूका 13:26, मत्ती 7:22, लूका 13:27। इस जीवन में उन्होंने मसीह के साथ संगति में प्रवेश नहीं किया है, इसलिए वे स्वर्ग की भाषा नहीं जानते, वे इन आनंद के लिए अजनबी है। मनुष्य किसी मनुष्य की बातों को जानता है, उस मनुष्य की आत्मा को बचाना है जो उसके अंदर है। यहां तक कि ईश्वर की बातों को कोई मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर की आत्मा जानती है। 1 कुरिन्थियों 2:11। बहुत से शब्द जो कभी नंबर 1 पर पड़े थे, वे कयामत के वे शब्द है। मुझे पता नहीं तुम कौन हो, आत्मा की संगति जिसे आपने मामूली किया है अकेले ही आपको शादी की दावत में खुशी के साथ पैदा कर सकती है। इस दृश्य में आप भाग नहीं ले सकते। ये प्रकाश अंधे आंखों पर पड़ता है और बहरे कानों पर उसकी धुन। इसका प्रेम और आनंद विश्व हृदय में आनंद को कोई राग नहीं जगा सकता था। आप अपने साहचर्य के लिए अपने स्वयं के गवाह द्वारा स्वर्ग से बाहर बंद है। रोने की आवाज सुनकर हम जागने के लिए ईश्वर से मिलने के लिए तैयार नहीं हो सकते। देखो दूल्हा फिर उन्हें खाली करने के लिए, हमारे खाली दिलों को इकट्ठा करना होगा। हम यहां मसीह को अपने जीवन से अलग नहीं रख सकते और फिर भी स्वर्ग में उसके साहचर्य के लिए फिट रहे। दृष्टांत में बुद्धिमान कुवारियों के पास अपनी दियों के साथ उनकी कुप्पियों में तेल भी था। रात को देखने से उनकी ज्योति जलती है। इसमें दूल्हे के सम्मान के लिए रोशनी को प्रफुल्लित करने में मदद की। अंधेरे में बाहर चमकते हुए ये शादी की दावत के लिए दूल्हे के घर रास्ता रोशनी करने में मदद करता है। इसलिए तुम मसीह के अनुयायियों को दुनिया के अंधेरे में प्रकाश डालना है। पवित्र आत्मा के माध्यम से ईश्वर का वचन एक प्रकाश है, क्योंकि यह सुनने वाले के जीवन में एक परिवर्तनशील शक्ति बन जाती है। उनके वचनों के सिद्धांत को उनके दिलों में आरोपित करके पवित्र आत्मा पुरुषों में ईश्वर के गुणों को विकसित करता है। उनकी महिमा का प्रकाश, उनका चरित्र उनके अनुयायियों में चमकने दो। इस प्रकार वे परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। वर वधु के घर तक जाने के मार्ग को परमेश्वर के नगर को मेमने के विवाह स्थल तक ले जाते हैं। दूल्हे का आना आधी रात को था, सबसे अंधेरा समय। इसलिए मसीह का आना इस धरती के इतिहास के सबसे काले दौर में होगा। नूह और लूत के दिनों में मनुष्य के पुत्र का आगमन से ठीक पहले दुनिया की स्थिति का चित्रण किया गया है। इस समय की ओर संकेत करने वाले शास्त्र घोषणा करते हैं, शैतान पूरी ताकत के साथ और अधर्म के सभी छल के साथ काम करेगा। थिस्सलुनीकियों 2:9-10। उसका काम स्पष्ट रूप से तेजी से बढ़ते हुए अंधरे, बहुपक्षीय त्रुटियों, विधर्मियों और इन अंतिम दिनों के भ्रम से प्रकट होती है। न केवल शैतान दुनिया को बंदी बना रहा है, बल्कि उसके धोखे हमारे प्रभु यीशु मसीह के कुशल चर्ची को छेड़ रहे हैं। महान धर्मत्यागी आधी रात के रूप में गहरे रंग में विकसित होगी, बालों का बोरी के रूप में अम्दे। परमेश्वर के लोगों के लिए ये परीक्षण की रात होगी, रोने की रात होगी, सच्चाई की खातिर जुल्म की रात होगी, लेकिन अंधेरे की रात से ईश्वर की ज्योति चमक उठेगी। वो अंधेरे से प्रकाश को चमकाने का कारण बना है। दूसरा कुरिन्थियों 4:6। जब पृथ्वी बिना रूप में थी और शून्य थी और अंधेरा गहरा था, ईश्वर की आत्मा पानी के ऊपर थी। उत्पत्ति 1:2-3। इसलिए आध्यात्मिक अंधकार में परमेश्वर का वचन आगे बढ़ता है। प्रकाश होने दे अपने लोगों से, वो कहता है, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु के तेज ऊपर चढ़ा हुआ है। यशाया 60:1। देखना, शास्त्र कहते हैं अंधकार पृथ्वी को ढक देगा और लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन प्रभु तुम पर उदय होगा और उसकी महिमा तुम पर देखी जाएगी। यशाया 60:2। यह ईश्वर की गलतफहमी है कि दुनिया को गुलाम बना रहा है। पुरुष अपने चरित्र का ज्ञान खो रहे हैं। ये गलत समझा गया है और गलत व्याख्या की गई है। जिस समय ईश्वर से एक संदेश घोषित किया जाता है, एक संदेश उसके प्रभाव में और उसकी शक्ति में अब तक रहने वाला है। उनके चरित्र को जाना जाता है। दुनिया के अंधेरे में उसकी महिमा का प्रकाश, उसकी अच्छाई, दया और सच्चाई का प्रकाश डाला जाना है। ये यशाया द्वारा वचनों में उल्लिखित कार्य है। हे यरूशलेम, जो सबसे अच्छी खबरें लाता है, अपनी आवाज को ताकत के साथ उठाते हैं, इसे उठाते हैं, डरो मत। यहूदा के शहरों से कहो, अपने ईश्वर को निहारे। ईश्वर मजबूत हाथ के साथ आएंगे, उनके लिए उनका शासन होगा। निहारना, उसका इनाम उसके साथ होगा और उसके लिए उसके काम हैं। यशाया 40:9-10। जो दूल्हे के आने की प्रतीक्षा करते हैं, वे लोगों से कहते हैं, अपने ईश्वर को निहारे। दयालु प्रकाश की आखिरी किरणें, दुनिया को दी जाने वाली दया का अंतिम संदेश, उनके प्यार के चरित्र का रहस्योद्घाटन है। बच्चों के नाम में ईश्वर को अपनी महिमा प्रकट करनी है। अपने स्वयं के जीवन और चरित्र में वे प्रकट करते हैं कि उनके लिए ईश्वर की कशपा क्या है। धर्म के सूर्य का प्रकाश कार्यों में आगे बढ़ना है। सत्य और पवित्रता के कार्यों में पिता की महिमा का बखान करने वाला मसीह अपने प्रकाश के रूप में दुनिया में आया। वो पुरुषों के लिए ईश्वर प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था और उसके बारे में लिखा है कि उसे पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ घोषित किया गया है और अच्छा करने के विषय में चला गया। प्रेरितों 10:38। नासरत के आराधनालय में उन्होंने कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने गरीबों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया। उसने मुझे टूटे हुए को ठीक करने, बंधुओं को उपदेश देने और उबारने के लिए भेजा है, अंधे को दृष्टि, उन्हें आजाद करने के लिए, जो प्रभु के स्वीकार्य वर्ष का उपदेश देने के लिए तैयार है। लूका 4:18-19। ये वो काम या जो उसने अपने शिष्यों को करने के लिए दिया था। मैं दुनिया की रोशनी हूं, उन्होंने कहा, अपने प्रकाश को पुरुषों के सामने चमकने दो, ताकि वे आपकी अच्छाई को देख सकें और अपने पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। मत्ती 5:14-16। ये वो काम है जो नबी यशाया वर्णन करता है, जब वो कहता है, क्या ये भूखे को रोटी नहीं देता और गरीबों को तुम्हारे घर पर लाया जाता है? जब तुम नग्न व्यक्ति को देखते हो, उसे ढक देते हो, तुम अपने शरीर से अपने को नहीं छिपाओगे और सुबह के प्रकाश की रोशनी होगी और तुम्हारा स्वास्थ्य तेजी से आगे बढ़ेगा और तुम्हारा धर्म तुम्हारे सामने आएगा। प्रभु की महिमा तेरा प्रतिफल होगा। यशाया 58:7-8। इस प्रकार आध्यात्मिक अंधकार की रात में ईश्वर की महिमा, उनकी कलीसिया के माध्यम से आगे झुकना और उन शोक को शांत करना है। हमारे चारों ओर एक दुनिया के दुख की लहरें सुनाई देती है। हर तरफ जरूरतमंद और परेशान है। या जीवन की कठिनाइयों और दुखों को दूर करने और नम्र करने में सहायता करने के लिए हमारा है। व्यवहारिक कार्य का केवल उपदेश देने की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव होगा। हमें भूखे को भोजन, नग्न को वस्त्र और बेघरों को आश्रय देना है, और हमें इससे अधिक करने के लिए कहा जाता है। आत्मा की इच्छा। केवल मसीह हम में निवास कर रहा है तो हृदय दिव्य सहानुभूति से भरा होगा। बयाना सील किए गए फव्वारे मसीह प्यार की अनसुना कर दिया जाएगा। ईश्वर न केवल हमारे उपहार के लिए जरूरमंदों के लिए कहते हैं, बल्कि हमारे हसमुख प्रतिज्ञान, हमारे आशावादी शब्दों, हमारे दयालु हाथ मिलाने के लिए कहते हैं। जब मसीह ने बीमारों को चंगा किया तो उन्होंने उन पर हाथ रखा, तो क्या हमें उन लोगों के साथ निकट संपर्क में आना चाहिए जिन्हें हम लाभान्वित करना चाहते हैं? ऐसे कई लोग हैं जिनसे आशाएं विदा हो चुकी है, उनके लिए रोशनी वापस लाओ। बहुतों ने हिम्मत की हार ली है, उन्हें जयवार के वचन बोले, उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसे हैं जिन्हें जीवन की रोटी चाहिए, उन्हें परमेश्वर के वचन से पढ़ें। कई लोग पर एक आत्मा बीमारी है जो न तो सांसारिक बाम का काम कर सकती है और न ही चिकित्सक ठीक कर सकते हैं। इन आत्माओं के लिए प्रार्थना करो, उन्हें यीशु के पास लाओ। उन्हें बताए कि गिलाद में बाम है और वहां एक चिकित्सक है। प्रकाश एक आशीर्वाद है, एक सार्वभौमिक आशीर्वाद है जो दुनिया के अपने खजाने की अस्वाभाविक, अपवित्र, ध्वस्त देता है। तो ये धर्म के सूर्य के प्रकाश के साथ है। पूरी पृथ्वी, जैसे कि यह पाप और दुख और दर्द के अंधेरे में लिपटी है, को परमेश्वर के प्रेम के ज्ञान के साथ प्रकाश में लाना है। कोई संप्रदाय रैंक या लोगों के वर्ग से स्वर्ग के सिंहासन को बाहर करने के लिए प्रकाश चमक रहा है। आशा और दया के संदेश को धरती के छोर तक ले जाना है। जो भी होगा आगे पहुंच सकता है और ईश्वर की ताकत को पकड़ सकता है और उसके साथ शांति बना सकता है। अब आधी रात के अंधेरे में लिपटने वाले हाथ नहीं है। चमक धर्मी के सूर्य के उज्ज्वल बीम से गायब हो जाता है और नरक की शक्ति दूर हो जाती है। लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता है जो उसे खुद नहीं मिला है। ईश्वर के काम में मानवता कुछ भी पैदा नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास से खुद को ईश्वर के लिए एक हल्का वाहक नहीं बना सकता है। यह स्वर्ण नालियों में भारी संदेश वाहक द्वारा खाली किया गया सुनहरा तेल था, जिसे सुनहरे कटोरे से अभयारण्य के लैंप में आयोजित किया जाता था, जिससे एक निरंतर उज्ज्वल और चमकदार रोशनी पैदा होती थी। यह ईश्वर का प्रेम है जो मनुष्य को लगातार हस्तांतरित करता है, जो उसे प्रकाश प्रदान करने में सक्षम बनाता है। उन सभी के दिलों में जो विश्वास से ईश्वर के लिए एकजुट होते हैं, प्यार का सुनहरा तेल स्वतंत्र रूप से बहता है। अच्छे कामों में फिर से चमकने के लिए ईश्वर के लिए वास्तविक हार्दिक सेवा में, पवित्र आत्मा के महान और मापक उपहार में स्वर्ग के सभी संसाधन समाहित है। ईश्वर की ओर से किसी भी प्रतिबंध के कारण ऐसा नहीं है कि उनकी कशपा धन पृथ्वी पर ईश्वर के हिस्से के लिए प्रवाहित करने के लिए तैयार थे, तो सभी उसकी आत्मा से भर जाएंगे। यह एक जीवित माध्यम होने के लिए हर आत्मा का विशेषाधिकार है, जिसके माध्यम से ईश्वर दुनिया को उनकी कशपा के खजाने, मसीह के बेशुमार धन का संचार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मसीह इतने एजेंटों की इच्छा रखता है जो दुनिया की उसकी आत्मा और चरित्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुछ को इसकी आवश्यकता है। सभी स्वर्गीय माध्यम का इंतजार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पवित्र तेल को खुशी और मानव दिलों को आशीर्वाद देने के लिए डाला जा सकता है। यीशु ने हर प्रावधान किया है कि उनकी कलीसिया शरीर से रूपांतरित हो जाए, जो दुनिया की रोशनी के साथ रोशन हो, इम्मानुएल की महिमा का बोध कराए। यह उनका उद्देश्य है कि प्रत्येक मसीही प्रकाश और शांति के आध्यात्मिक वातावरण से घिरा होगा। वह चाहता है कि हम अपने जीवन में उसके अपने आनंद को प्रकट करें। स्वर्गीय प्रेम के अंतर्निवास द्वारा आत्मा की अविवेक को दिखाया जाएगा। ईश्वरीय परिपूर्णता अभिमानित मानव एजेंट के माध्यम से दूसरों को दिया जाएगा। धार्मिकता के सूर्य ने अपने पंखों में उपचार किया है। मलाकी 4:2। इसलिए हर सच्चे शिष्य से जीवन, साहस, मदद और चिकित्सा के लिए प्रभाव को फैलाना है। मसीह के धर्म का मतलब पाप की क्षमा से अधिक है। इसका मतलब है कि हमारे पापों को दूर करना और पवित्र आत्मा के अनुग्रह के साथ शून्य को भरना। इसका अर्थ है दिव्य प्रदीप्ति, ईश्वर में आनंदित होना। इसका अर्थ है स्वयं के दिल को खाली करना और मसीह की स्थायी उपस्थिति के साथ धन्य। जब मसीह आत्मा में राज्य करता है तो उसमें पवित्रता होती है, पाप से मुक्ति मिलती है। महिमा, पूर्णता, सुसमाचार योजना की पूर्णता जीवन में पूरी होती है। उद्धारकर्ता की स्वीकृति पूर्ण शांति, उत्तम प्रेम, उत्तम आश्वासन की चमक होती है। जीवन में सामने आए यीशु मसीह के चरित्र की सुंदरता और खुशबू इस बात की गवाही देती है कि उत्तम ईश्वर ने वास्तव में अपने पुत्र को ही उसका उद्धारकर्ता बनाकर दुनिया में भेजा है। मसीह अपने अनुयायियों को चमकाने का प्रयास नहीं करता है, वो कहता है अपना प्रकाश चमकने दो। यदि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है तो प्रकाश आप में है। अवरोध को दूर करें और प्रभु की महिमा प्रकट करें। अंधेरे को भेदने और दूर करने के लिए प्रकाश आगे बढ़ेगा। आप अपने प्रभाव की सीमा के भीतर चमकने में मदद नहीं करते हैं। मानवता के रूप में अपने स्वयं के गौरव का रहस्योद्घाटन स्वर्ग को पुरुषों के इतना निकट लाएगा कि आंतरिक मंदिर में सुशोभित होने वाली सुंदरता हर आत्मा में देखी जाएगी जिसमें उद्धारकर्ता रहता है। एक घर्षणत मसीह की महिमा के द्वारा पुरुषों को बंदी बनाया जाएगा और कई आत्माओं से प्रशंसा और धन्यवाद की धाराओं में इस प्रकार ईश्वर को जीत लिया महिमा महान दाता के वापस वो जाएगी। उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुमने है। यशाया 60:11। जो लोग दूल्हे से मिलने जाते हैं उनके लिए संदेश दिया गया है। मसीह शक्ति और महान महिमा के साथ आ रहा है। वो उसके साथ सभी पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है। जबकि सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ है, संतों के हर निवास में प्रकाश होगा। वे स्वयं को पहले प्रकाश को पकड़ लेंगे। उनके वैभव से चमकती हुई रोशनी चमक उठेगी और यीशु उद्धारकर्ता उन सभी की प्रशंसा करेगा जिन्होंने उसकी सेवा की है। उनकी उपस्थिति में दुष्ट लोग भाग जाते हैं। मसीह के अनुयायी आनंदित होंगे। मसीह के दूसरे आगमन के समय को देखते हुए पितृपुरुष अय्यूब ने कहा, जिसे मैं अपने लिए देखूंगा और मेरी आंख निहारेगी, न कि कोई अजनबी। अय्यूब 19:27। उनके वफादार अनुयायियों के लिए मसीह एक दैनिक साथी और परिचित मित्र रहा है। वे परमेश्वर के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं। उन पर यीशु की महिमा बढ़ी है। उनमें यीशु मसीह के सामने परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश परिलक्षित हुआ है। अब वे अपनी महिमा में राजा की चमक और महिमा की अकल्पित किरणों में आनंदित होते हैं। वे स्वर्ग के भोज के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके दिल में स्वर्ग है। उत्थान सिर के साथ, धर्मी के सूर्य के उज्ज्वल किरणों के साथ उन्हें चमकते हुए, आनंदित होने के साथ कि उनकी मुक्ति और वे दूल्हे से मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, लो, ये हमारा ईश्वर है, हमने उसके लिए इंतजार किया है और वो हमें बचा लेगा। यशाया 25:9। और मैंने सुना है कि यह एक महान भीड़ की आवाज थी और कई पानी की आवाज के रूप में और शक्तिशाली गड़गड़ाहट की आवाज के रूप में और कहते हैं, अल्लेलुया, ईश्वर, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमें खुशी और आनंद दे। उसके लिए सम्मान मेमने की शादी के लिए आ गया है और उसकी पत्नी ने खुद को तैयार कर लिया और मुझे करने के लिए कहा है, लिखो, धन्य है वो जो मेमने की शादी के लिए जाता है। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है और वे उसके साथ चुने हुए और वफादार है। प्रकाशित वाक्य 19:6-9, 17:14।